ओम शांति। प्रश्नों से पार। क्वेश्चन नंबर 93। किसी ने प्रश्न पूछा है, मेरा प्रश्न है कि मैं लाख कोशिश करती हूं कि मेरे घर में सभी मुझसे खुश रहे, संतुष्ट रहे, पर पता नहीं मैं उनके मन की पूरी नहीं कर पाती और कुछ न कुछ कंप्लेंट हमेशा बनी ही रहती है। मैं ऐसा क्या करूं कि सभी को संतुष्ट कर पाऊं और जो भी कार्मिक अकाउंट है वो सेटल हो जाए, क्योंकि इन सारी बातों में मैं बहुत डिस्टर्ब फील करती हूं। तो चिमन भाई जी क्या उत्तर देंगे इनको? घर के लोग इनसे संतुष्ट नहीं है।
वो सबसे लास्ट में उत्तर पहले कुछ दूसरे उत्तर दो उनका पार्ट नहीं है संतुष्टता को, तो ठीक है वो आत्माएं इस आत्मा से संतुष्ट नहीं है, और ऐसे नहीं कि ये प्रयत्न नहीं कर रही है, लाख कोशिश, सब प्रकार की कोशिश कर ली है, बीसों नाखूनों का जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु लोग संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने भी ठान रखी है, उन्होंने भी कसम उठा रखी है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे, जो करना है कर लो, अब क्या करें? हां, सबसे पहले तो शायद आत्मा के अंदर ही अतृप्ति है, असंतुष्टता है, और जो आत्मा स्वयं असंतुष्ट है, स्वयं अतृप्त है, वो कैसे दूसरों को संतुष्ट कर सकती है? स्वयं ही बेचैनी है, और ये बेचैनी इस बेचैनी को और बढ़ा रही है कि दूसरे मुझसे असंतुष्ट है। दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? सबसे पहले स्व पुरुषार्थ स्व से चालू होता है, स्वार्थ, स्वार्थ अर्थात स्व के लिए किया गया पुरुषार्थ, बड़ा ही उच्च धार्मिक आध्यात्मिक शब्द है स्वार्थ, जो कि गलत हाथों में पड़ गया। तो सबसे पहले अध्यात्म में एक ही सिद्धांत है, स्वार्थी भव, स्वार्थी बन जाना, अर्थात पहले सबसे पहले स्व आत्मा पर केंद्रित हो जाना, स्व आत्मा पर ध्यान देना, स्व संतुष्टता पर ध्यान देना। मैं अतृप्त क्यों हूं? मुझ में कौन सी वो बात है जो मुझे अतृप्त किए हुए है? कौन सी वो चीजें हैं जिसके वजह से मैं बेचैन हूं, मैं अतृप्त हूं? जब स्वयं में संतुष्टि आ जाएगी, ये संतुष्टि विकीर्ण होगी, रेडिएट होगी, फैलेगी और उन आत्माओं के मनों में जाएगी, उन आत्माओं के सूक्ष्म संकल्पों को प्रभावित करेगी। अभी यहीं पर बेचैनी है, इसके लिए ये बेचैनी उस बेचैनी को और भड़का रही है, और उसके वजह से वो आत्माएं संतुष्ट नहीं हो पा रही है। और एक चीज, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं उन आत्माओं के प्रति घृणा है, उतना प्यार नहीं है। ऊपर से हम सोच रहे हैं वो मुझसे संतुष्ट हो या मैं उनको संतुष्ट करूं, पर अंदर से साथ साथ उन आत्माओं के अवगुण देख रहे हैं, अवगुणी दृष्टि है, और साथ साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि वो संतुष्ट भी हो जाए। मन में क्या कहते हैं उसको, दोगुला, दो माइंड है, डबल स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले तो अपने आप को संतुष्ट करना, सबसे पहले तो अपने आप की बेचैनी को ठीक करना, यह संकल्प ही छोड़ दो कि मुझे दूसरों के साथ कुछ करना है, और फिर दूसरों के प्रति यदि सूक्ष्म घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उस ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा से मुक्त करना स्वयं को। कोई स्वार्थ भी हो सकता है तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहे कि ये सोच रहे कि ये कुछ इसका कुछ स्वार्थ है, वो आपके संतुष्ट करने की क्रिया को चापलूसी चाटुकारिता समझ रहे हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं हो रहे। वो सोच रहे ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको अपना निहित स्वार्थ पूर्ण करना है, इसलिए संतुष्ट नहीं हो रही है। और दूसरी बात, दूसरों को संतुष्ट करना ठीक बात है, पर वो कोई टारगेट नहीं बना के रखते ना कि मुझे संतुष्ट करना ही है, पकड़ पकड़ के एक एक को। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं खुद दुखी हो जाऊंगा, किस किस को मैं संतुष्ट करूंगा? हम अच्छा सोचते जाएं, अच्छा करते जाएं, क्योंकि कितना भी करो
हम किसी के मुंह को बंद तो नहीं कर सकते, हम पट्टी कैसे बांधे दूसरों के मुंह को। 100 लोग तारीफ करने वाले निकलेंगे तो 50 तो निंदा करने वाले होंगे, कम से कम 10 तो निंदा करने वाले होंगे। कुछ सामने निंदा करेंगे, कुछ पीठ पीछे निंदा करेंगे, ग्लानी तो करनी ही है, कुछ मन ही मन करेंगे, अप्रकट अव्यक्त भाव से करेंगे, अव्यक्त निंदा अव्यक्त निंदा जो व्यक्त नहीं की गई, जिसकी अभिव्यक्त नहीं हुई है, ऐसी अव्यक्त अनमैनिफेस्ट निंदा मनी मन कुड़ते रहेंगे, मनी मन कोसते रहेंगे, चुभाते रहेंगे। आज कहा ना बाबा ने, कांटा चुभाते हैं संसार में, कांटों का जंगल है, कांटे चुभाते रहते हैं। तो यहां कोई कांटे ना चुभाए ऐसा हो सकता है क्या? हम सोचे हमारे पर सेज बिसी हो फूलों की, पथ पर फूल बिछे हो, ऐसा हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ये मार्ग अकेले का है, यहां पर अकेले को जाना है और ये सब सहन करते हुए निकलना है आगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ की पोएम है वॉक अलोन, उसमें लिखा है, इफ दे टर्न अवे, इफ दे टर्न अवे, यदि वो चले जाए, एंड लिव यू क्रॉसिंग, वाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस, बेहद जंगल है, सुनसान जगह है, और वो तुम्हारे साथ ना दे, वो चले जाए और तुमको अकेला छोड़ दे, एंड अबेंडन यू, ट्रैम्पल थॉर्न्स अंडर दाय ट्रेड, अपने पैरों के नीचे वो कांटों को कुचल दो, एंड ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक्ट, और उस रक्त रंजित भूमि पर वॉक अलोन, कांटे ही कांटे पीछे, ट्रैम्पल द थॉर्न्स अंडर दाय ट्रेड एंड ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक वॉक अलोन, कांटे बिछे है, चलते जाओ कांटों के ऊपर, कांटे चुभेंगे, खून आएगा, परंतु रुकना नहीं, खून क्यों आया। तो यहां हर प्रकार के लोग है और अच्छा है, इतने इतने वैरायटी है, कब मिलेंगे ऐसे? सतयुग में मिलेंगे धुलाई होकर, फिर क्या फायदा, अभी मजा है, कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे अभी धुलाई करेंगे, फिर उनकी धुलाई होगी और फिर उधर स्वच्छ होके निकलेंगे। हाँ, वो क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं सोचना, खेल है, खेल है। संडे की मुरली में था ना, तुमको युद्ध थोड़ी करना है माया से, खेल है, खेल करो। तो खेल चल रहा है ये सृष्टि मंच पर, एंजॉय। तो दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में पहले नहीं पड़ना है, हमें खुद को संतुष्ट करना है, क्योंकि दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में फंसे तो कुछ और ही हो जाएगा। कल एक बहन आए थे, इधर ही रुके हैं, तो दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए। सेंटर पे कोई भाई था, उसको अपनी बातें शेयर करने लगे, वो भी बड़ी अनासक्त भाव से उनको गाइड करने लगा, ऐसे करो वैसे करो, घर पे भी आने लगा, उनके युगल से भी मिलने लगा, समस्या है। पर धीरे धीरे उसी भाई में आसक्ति हो गई, जिससे जो गाइड था, मार्गदर्शक था, और जब उसको पता चल गया कि इस बहन को अब मुझ में आसक्ति हो गई है, तो वो थोड़ा सा अनासक्त हो गया, डिटैच होने लगा, तो ये और डिप्रेशन में, क्योंकि अब वो फोन नहीं उठाता, मैसेज के आंसर नहीं करता, बस जिसको जितना उसको बताना था उसने बता दिया, पर अभी वो रह गया बाजू में ज्ञान योग, इधर आसक्ति नहीं तैयार खड़ी हो गई। अब वो मुझसे दुखी है, वो मुझसे नाराज है, अब मैं क्या करूं उसको मनाऊं? वो मनाऊं नहीं, वो राइट है वो जो कर रहा है, आसक्ति तो इधर हो गई उसने, हाँ चल उधर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत हुई हो, पर उसने संभाल तो लिया खुद को, वो अनासक्त हो गया, डिटैच हो गया। पर ये थोड़ा सा पहले से संभालना चाहिए था। इसलिए जिससे राय ले रहे हैं, जिसकी एडवाइस ले रहे हैं, जिसको अपना गुरु बना रहे, टीचर बना रहे, वो टीचर में ही फंस जाते हैं, ज्ञान योग रह गया बाजू में। इसके लिए टीचर कठोर होना चाहिए, निर्दयी, ज्यादा एंटरटेन किया वो खुद तो खुद को बचा लेगा, पर जो सामने वाली आत्मा है वो फंस जाएगी। इसलिए तो हम कहां थे, संतुष्टता। तो ज्यादा किसी को संतुष्ट करने के चक्कर फेरे में नहीं पड़ना है, अपने संतुष्टता, अपने आप को संतुष्ट रखना है। हाँ, फिर वो अपने आप दूसरे हो जाएंगे संतुष्ट। वो कोई लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है कि मैं एक एक को पकड़ पकड़ के चुन चुन के संतुष्ट करूं और पूछूं कि मैंने ये किया हुए क्या, हो क्या संतुष्ट, हुए भी तो थोड़ी हां कहेंगे। हाँ, वो दादी के लिए कहा था। वो समय और था, वो व्यक्ति कोई और थे, वो कोई सबके लिए नहीं था। तो सबसे पहले तो डिटैच हो जाओ। उत्तर है डिटैचमेंट, उत्तर है अनासक्त हो जाओ, उत्तर है स्व केंद्रित हो जाओ, उत्तर है अपने ध्यान को उससे अपनी ओर लगाओ, दी अदर से सेल्फ की ओर लगाओ। दी अदर का चिंतन करते करते हम उसमें आसक्त हो सकते हैं। अच्छा चलो, कोई हो भी गया संतुष्ट तो क्या, आज संतुष्ट है कल असंतुष्ट हो जाएगा। तो ये कोई लक्ष्य नहीं है, लाख कोशिश करूं और फिर उसकी कंप्लेंट। हम स्वयं को स्थिर रखे, अच्छा लडोल रखे, संतुष्ट रखे, अपने कार्य, अपना ज्ञान योग को और बढ़ाओ। अपने आप ज्ञान, हमारे ज्ञान योग से ही अपने आप वो संतुष्ट होंगे। वो भी देखना है कौन सी बात है, कैसी बात है, क्या ज्ञान युक्त है वो बात, श्रीमत के अनुसार है। और हमें जरूरी थोड़ी ना सबको संतुष्ट करना। संसार के लोग आए, कोई पुराना मित्र आए, कहेंगे चलेगा, कहेगा चलो थोड़ा सिनेमा जाते हैं। हम पहले तो जाते थे, अब क्या हो गया तुमको, दोस्ती भूल गई क्या, ऐसा कहे दो। इसके लिए परम धाम का एक योग जो हमने कहा बाबा के सात स्वरूप में पहला बताया था, बीज, वो बीज है, वो बीज है। उस बीज पर केंद्रित करो, उस बीज से प्यार करो, तो उसका जो झाड़ है नीचे का वो सारा से प्यार, उस उन सब से प्यार अपने आप मिलेगा। बाप से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा हमारे साथ ही हमको सहयोग नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे बीज से प्यार बढ़ाओ, क्योंकि बीज से जब प्यार बढ़ेगा तो जो टाल टालिया है, जो पत्ते हैं, उनका प्यार तुम्हें स्वतः मिलेगा। बीज से प्यार कम है मतलब योग कम है, तो योग को बढ़ाना है, ड्यूरेशन को, क्वालिटी को, गुणवत्ता, सब कुछ, उसकी अवधि, सब कुछ बढ़ना चाहिए। तो अपने आप दूसरी आत्माएं संतुष्ट होगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मेरे मन में कई दिनों से बहुत ही निगेटिव और बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हो रहे मतलब चालू है, प्रेजेंट टेंस। न चाहते हुए भी मन में बुरे विचार ही आते हैं, चाहते नहीं आए परंतु बुरे विचार आते हैं। और शायद इसी वजह से घर इस समय दुख, घर में इस समय दुख वाला ही माहौल बना रहता है। मैं क्या करूं, कृपया मेरी समस्या का समाधान बताइए। बुरे विचार आ रहे, क्या करें, खराब खराब विचार। राम और लक्ष्मण वन में हैं, जंगल में घूमते रहते हैं, एक स्थान पर पहुंचते हैं, खंडर सा स्थान है। लक्ष्मण अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही लक्ष्मण अंदर जाता है उसके मन में आते हैं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, वनवास तो राम को मिला, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मेरी पत्नी उधर, मेरा राज्य उधर, वनवास राम के वो मिला और इसके पीछे मैं क्यों आ गया, बिना मतलब के, ये कौन सी बेसिर पैर की बात है, मुझे तो वहां रहना चाहिए सुख वैभवों में, और कहां मैं ये इस वनवाह में। फिर बाहर निकलता है और फिर सोचता है, अरे ये तो मेरे भैया है, मुझे तो इनकी सेवा करना ही परम कर्तव्य है। फिर अंदर घुसता है, फिर निगेटिव विचार आने लगते हैं। तो वो अपने भाई को पूछता है, प्लीज एक्सप्लेन क्या है ये, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बताता है राम जी कि बहुत वर्षों पहले यहां दो दैत्य थे, दोनों भाई हमेशा झगड़ते थे एक साथ, और एक दिन लड़ते लड़ते दोनों इसी स्थान पर मर गए, उनके वाइब्रेशंस इधर है प्रकंपन। तो स्थान का प्रयोग, स्थान का भी प्रभाव है। जब ऐसी स्थिति हो जाए ज्ञान सुनना पढ़ना कुछ काम नहीं करता है, स्थान बदलो, चेंज प्लेस, मधुबन आ जाओ कुछ दिन के लिए सेवाओं में, 15 दिन 10 दिन। हाँ वो तो जाएंगे, परंतु वहां फिर दृष्टिकोण थोड़ा बदल जाएगा, यहाँ थोड़ा साक्षी भाव आएगा, उस परिस्थिति से उन विचारों से थोड़ी सी डिटैचमेंट आएगी, यहाँ पर थोड़ी भी आ जाए तो बहुत है, क्योंकि वहां तो एकदम फंसे हुए हैं, जैसे वो विचार से छूट नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, या ये व्यक्ति मुरली नहीं सुनता है, और इसे ये पता नहीं है कि मन में समर्थ संकल्प लाने चाहिए और समान होना चाहिए और मुरली पढ़नी चाहिए, सब कुछ ही कर रहे होंगे। वही चेंज द प्लेस, अर्थात कोई भी चीज, चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे रिट्रीट सेंटर, या फिर कहीं दूसरा स्थान, दूसरा गांव, दूसरा शहर, कोई हिल स्टेशन, कोई भी जगह, या भक्ति का कोई स्थान, या निसर्ग का कोई स्थान, निसर्ग का सानिध्य जहां है, प्राकृतिक सौंदर्य जहां है, ऐसे किसी स्थान पर जाए, किसी एकांत में, किसी मौन में कुछ समय के लिए वहां बैठे और फिर चिंतन करे अपनी परिस्थिति के विषय में। यह तो पहला उत्तर हुआ। और क्या करे, मन में बुरे विचार आ रहे, क्यों आ रहे, किस लिए आ रहे, क्या देख लिया, क्या सुन लिया, क्या हो गया, ट्रिगर क्या है, फैक्टर क्या है, उत्तेजक क्या है, फिलिप क्या है, वो किस वजह से यह सब आया, इसके विषय में सोचना। दूसरा, तीसरा, बुरे विचार आ रहे हैं, क्या करे, कुछ तो क्लासेस सुनो, क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, विचार जब का विचारों का तूफान मन में उठता है, तो क्या करो, वॉकिंग, ईयरफोन लगाओ और एक क्लास 1 घंटे का सुनो, आते समय वही क्लास रिपीट सुनो, दोपहर में फिर उसी क्लास को सुनो, शाम को उसी क्लास को सुनो, रात को थोड़ा सा लिखो, या क्लास को सुनो, पॉज पॉइंट्स लिखो, पॉज पॉइंट्स, पॉज पॉइंट्स। एक बहन ने हमको एक वीडियो भेजा था कल, उसमें देखा था, देखो माता है कैसी क्लासेस सुन रही है, तो मोबाइल रखा हुआ है, सेंटर है ऐसा मोबाइल रखा हुआ है, उसमें क्लास चालू है, एक माता कुछ तो बहुत सारी सेवाएं चालू है सेवा केंद्र में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, क्लास सुनते सुनते ये चालू है। तो क्लास सुनते सुनते, क्योंकि सीधा मुरली बहुत हायर लेवल है, उसमें अव्यक्त मुरलियों को समझने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए। हाँ, उनके क्लासेस में थोड़ी बातें क्लियर की जाती है, तो उसको सुना जा सकता है। तो एक तो वो, और क्या करेंगे, दिनचर्या को थोड़ा ठीक करना है, अपने आप को स्थूल सेवा में बिजी कर देना। जब ऐसे बुरे विचार आए, किचन में चले जाओ, भंडारे में चले जाओ, या सेवा केंद्र पर जाओ, पूछो कुछ है क्या सेवा, किसी को कहीं घुमाना है क्या, लेके जाना है क्या, स्थूल सेवा, या तो अपनी अलमारी है सारा सामान नीचे निकालो और फिर लगाओ, ठीक है मनी भाई, सारे दवाइयां नीचे और फिर दवाइयां लगाना चालू कर दो बॉक्स में। तो स्थूल सेवा करना, तो ये हो गया एक स्थूल। और क्या करेंगे, संग, अच्छे पुरुषार्थियों के संग में चले जाना, सत्संग। सत्संग ऐसी चीज है कि कितने भी बुरे विचार आ रहे हो, सत्संग में भस्म हो जाएंगे। महान आत्माओं के संग में चले जाना, श्रेष्ठ आत्माओं के संग में चले जाना, जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है वहां चले जाना, वहां जाके बैठना भी क्या होगा, उस बुरे विचार से मुक्त कर देगा, क्योंकि प्रकंपन ही वैसे है। तो सत्संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, रामचरितमानस में सबसे पहली भक्ति श्री राम ने शबरी को जो बताई वो ये है, प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, संतों का संग करना, महान आत्माओं का संग करना, होली कंपनी में जाना, पहली प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति में से। और क्या करेंगे, बुरे विचार मन में आ रहे, माइंड को बिजी नहीं रखा, पर अभी ये कंटिन्यूस विचार आ रहे है उसमें माइंड को बिजी रखना, क्या करना, माइंड को डाइवर्ट करना, कहां पर, अच्छे अच्छे गीत सुनना, कौन से गीत सुनना, कौन से वाले, प्यार भरे गीत सुनना बाबा के, अच्छा अच्छा जो रह गए हुए हैं वो बाबा के गीत सुनो, इसमें इसी मुरली में था या कोई एक दूसरी मुरली में था ना, जिसमें बाबा ने कहा था डांस करो बाथरूम में जाकर, विदेशियों से मुलाकात है ना, कौन सी मुरली है, अगर उदास हो जाओ तो क्या करो, बाथरूम में जाके डांस कर सकते हो। हाँ, फिर और ज्यादा याद होगी ना, फ्रैक्चर विक्चर होगा तो। अच्छा, और क्या करो, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, बाबा के वीडियो देखो, बहुत बढ़िया। बाबा के वीडियो देखो, सोचो कि मैं बैठा हूं डायमंड हॉल में और अव्यक्त बाबा आए हुए हैं, मुरली चल रही है और चमाट, बुरे विचारों को फिर ठीक है, और क्या करेंगे। अच्छा, एफर्मेशंस, एक सकारात्मक संकल्प तैयार करना और उनको लिखना, या पहले से लिखे होंगे तो उनको बार बार पढ़ना, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ऐसी आत्मा हूं, वैसी आत्मा हूं। हाँ, विचारों को लिख देने का, और उनको देखना कि ये सारे बुरे विचार है, अब मैं इनको जला रहा हूं, ये गए आग में भस्म स्वाहा, ऐसे। और उल्टी गिनती करने से थोड़ा देर चलेगा काम, गिनती पूरी होने के बाद क्या करेंगे फिर, गिनती पूरी होने के बाद क्या करोगे फिर फिर से चालू हो जाएंगे वो तो, तब तक वो तो दमन हो गया थोड़े से हम के लिए, दमन हो गया वो थोड़े समय के लिए। जैसे दारू वगैरह लोग क्यों पीते हैं, उससे दुख भूल जाता है, उससे दुख भूल जाता है, परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता है। मेडिटेशन का एक उपयोग या फायदा, मेडिटेशन से आनंद की प्राप्ति होती। लोग कहते हैं आप मेडिटेशन करें क्यों, खाओ पियो मौज करो, दुख अगर होता है तो जाके पियो, ऐश करो, आराम करो, घूमने फिरने जाओ, पिकनिक जाओ, टीवी देखो। टीवी देखने से, सिनेमा देखने से, मूवी देखने से, कोई कॉमिकल थिंग देखने से, कोई कॉमेडी देखने से, कोई नाटक देखने से, या विकार में जाने से, ये सारी चीजें थोड़े समय के लिए दुख को भुला देती है, थोड़े समय, पर जैसे ही वो पूरी हो जाएगी फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगी वो। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, योग ऐसी चीज है कि जो आनंद उत्पन्न होता है, वहां से नया आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि वह वो आनंद के सोर्स नहीं है। सिनेमा, लस्ट, दीज आर नॉट सोर्सेस ऑफ जॉय, इसमें आनंद नहीं है, इसमें काम विकार दुख को भुला देता है अल्पकाल के लिए, परंतु बाद में बहुत बड़ा दुख हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन उसमें ऐड हो जाता है, जो दुख था वो तो है ही, एडेड फ्रस्ट्रेशन। इसके लिए ये जो मार्ग है ये शांति के मार्ग नहीं है। तो ये सब चीजें करो। अभी 95, अगला प्रश्न, मेरी मदर एक्सपायर कर गई और अब मैं और मेरा छोटा भाई अपनी बुआ के पास रहते हैं और मेरी बुआ हमें बहुत ताने मारती है, बुरा भला कहती रहती है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मुझे इन दुखों से छूटने के कोई उपाय बताएं। बुआ को छोड़ो, कहां जाएंगे बुआ को छोड़ के तो छोटे होंगे तो कहां जाएंगे, ये मां तो चली गई, अब पिता की बहन है उनके पास रह रहे हैं और वो ताने मारती रहती है। उत्तर क्या देंगे वो बताओ, दुख से कैसे छूटे। अब ये ज्ञान में है, वो ज्ञान में नहीं है, जो ज्ञान में है उनके लिए ताने मारना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं कर सकते। वो अगर कर भी दिए थोड़ा सा तो आत्मग्लानी इतनी बड़ी होगी। एक अच्छी आत्मा है जब किसी को दुख देती है, थोड़ा भी देगी तो दुख उसको इतना ज्यादा दुख होगा, खुद वो क्रोध कर भी ले तो उसको आत्मग्लानी बहुत ज्यादा होगी। दूसरी आत्माएं आराम से क्रोध करती है, ताने मारती है, सब कुछ कर लेती है बिना कोई पश्चाताप के, पर ब्राह्मण आत्मा से छोटा भी पाप हो जाए तो आत्मग्लानी उसका क्या होगा, वो तो दूर, उसको खुद ही दुख होगा, उसने किया चलेगा पर मैं नहीं करूं, क्योंकि हमको कूट कूट के संस्कार ही वो दिए गए हैं। तो एक दूसरा नया संघर्ष चालू हो जाएगा, उसने किया ठीक है वो चलेगा हम सहन करेंगे पर मैं वैसा ना करूं। अब क्या करें, कोई इसका प्रश्न है कि कोई दूसरा दुख दे रहा है, हम क्या करें। अच्छा अच्छा, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करना थोड़ी, अवचेतन मन को कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, अपने मन को बताते रहना तो वो करने लगेगी एक दिन। और मन को सकाश, ओके, तो मन के मन सा रोज उस आत्मा को इमर्ज करना और उससे माफी मांगते रहना। दूसरा, तीसरा स्थूल में क्या करे? बुआ की सेवा करे और खिलाए पिलाए। और क्या करे बुआ का? उसका प्रतिरोध ना कहे, प्रतिकार ना करे, प्रतिउत्तर ना दे, रिएक्ट ना करे, चुप रहे, सहन कर ले। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, उत्तर देते हैं, तो वो और बढ़ता है, कार्मिक अकाउंट और बढ़ता है, नए अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। उसने हमको एक कहा, हमने दो कहे, उसने हमको जलीकटी सुनाई, हमने और सुना दी अपनी तरफ से। हाँ, तो तो और उनकी आदत हो गई है वो, और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, और वो अज्ञानी है उस समय, वो परवश है उस समय, और हम तो ज्ञानी है, हम तो योगी है, हम महान है, ऊंच है, हम पूर्वज है, हम एंसेस्टर्स है, हमें तो उनकी पालना करनी है। एक ग्रुप दादी के पास आया था, गुलजार दादी के पास, बहनों का। उन्होंने कहा कि कोई फला फला है, वो हमको बहुत तंग करती है, क्या करे बोलो। दादी ने कहा था उसकी माँ, खुद माँ समझो और उसकी पालना करो। किसकी? अपने बड़े की। उसको बच्चा समझो, पर सामने मत, मन में बोलना मत कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी बच्ची हो, ये मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो उसकी पालना करनी है, उसको सहन करना है, फिर सहनशीलता की मूर्त बनना, मैं सहनशीलता का अवतार हूं। और व्यक्ति जब भी सहन करता है, सहन करने से पहले और सहन करने के बाद वो बढ़ जाता है। द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम विकास। सहन करने के पहले की अवस्था, सहन करने के बाद की अवस्था विकास है। और सहन करना श्रीमत है, क्योंकि बाप की आज्ञा है इसलिए तुम सहन करते हो। और सहन करने के बाद तुम वो नहीं रहते जो पहले थे। एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति की बहुत स्तुति हो रही है, ठीक है, दूसरों की स्तुति भी हुई, फिर बाद में निंदा हो रही है, और निंदा को सब कुछ सहन करते हुए पार कर जाता है। ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? जिसने निंदा को, निंदा के घुट को पी लिया, कड़वे घुट को। हाँ, वो पिलाने दो, वो जितना पिलाएंगे उतना हम अधिक शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, तो वो जितना हमको कुछ करेगा, क्योंकि हम सहन शक्ति के अवतार बनेंगे, हम आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी हमारी। परंतु हाँ, ये करते समय फिर उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव ना हो, कि वो उसके प्रति निगेटिव ना हो। जीसस क्राइस्ट को कोई पूछता है कि हमें, हमसे कोई अत्याचार ये करे, तो हमें कितनी बार उसको माफ करने चाहिए? 7 बार। वो सामने से ही प्रश्न पूछता है, कितनी बार माफ करना चाहिए? कोई हमारे साथ कुछ करे तो हम क्या 7 बार, कितनी बार माफ करें उसको? 7 बार। जीसस से 77 times, मतलब वो बहुत बड़ी फिगर हो गई। तब तक माफ करते रहो, तब तक माफ करते रहो उसको, 77 times। तब तक पुरुषार्थ भी तो करना है कुछ अंदर से, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, साक्षी होकर थोड़ा देखना है उसके पार्ट को भी। मजा आएगा फिर उसके पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे तो, वो ऐसा यू क्यों कर रही हो, कुछ तो होगा ना कुछ कारण। और उसने भी तो सोचा होगा हमें संपूर्ण बनाना है। मंथरा सबसे श्रेष्ठ पात्र है रामायण का, कितनी उसकी शुभ भावना थी कि राम वनवास जाए और असुरों का संहार करे। उसने सारा कलंक अपने सिर पर ले लिया ताकि राम जाए, नहीं तो वो नहीं होती तो राम गया ही नहीं होता, रावण का विनाश ही नहीं होता, तो रावण होती नहीं, रूखी सूखी। राम सीता के साथ विवाह हुआ, बस हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट राम की हुई उसकी वजह से, तो वो जरूरी है। तो इसके प्रति शुभ भावना रखे, शुभकामनाएं रखे, सकाश दे भोजन में, अगर खुद भोजन बना के उसको खुलाए, उसकी थोड़ी सेवा करे, थोड़ा डिटैच हो जाए, थोड़ा अलग मन, मेंटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट। और एक चीज लास्ट, इनका खुद का ही उस बुआ में मोह होगा। अभी भी मोह है, इसलिए दुख ज्यादा हो रहा है, सूक्ष्म मोह है उसमें, जो उनको भी नहीं पता कि हमारा मोह है, पर उस आत्मा का दुख देने वाले में मोह है, इसलिए जो दुख दे रहा है उससे ज्यादा दुख हो रहा है। सूक्ष्म मोह वहां काम कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न है, हमारे घर में नियमित रूप से गीता पाठशाला चलती है, रेगुलर मुरली क्लास होती है, पर जमीन जायदाद को लेकर घर में बहुत कलह रहता है, टेंशन का माहौल रहता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में शांति का माहौल बन जाए और शांति से क्लासेस भी चलती रहे। गीता पाठशाला है, क्लासेस चलती है, पर साथ में झगड़ा है जमीन जायदाद का झगड़ा क्या करे? पूरा सेंटर बना दो, खुद दूसरी जगह चले जाओ। और जमीन जायदाद का झगड़ा है, जमीन जायदाद और कोर्ट केसेस, इनका कोई अंत ही नहीं है। एक भाई अभी कुछ दिन पहले मिले थे, 25 साल से कोर्ट केस चालू है जमीन के लिए। कितने चक्कर लगा दिए कोर्ट में, मुरलियां सुनता हूं पर ध्यान नहीं रहता है, सारा दिन वकील वकील और जमीन जमीन और कोर्ट की हियरिंग डेट, वही चिंतन चालू रहता है, क्या करूं, छोड़ दूं कि क्या करूं। मैंने कहा आपको बाकी सब ठीक है ना, बहुत अच्छा है बाकी, तो छोड़ो, क्यों पकड़ के रखे हो जमीन, सब है भूमि गोपाल की कौन सी भूमि मेरी और कौन सी भूमि तेरी, सब उसकी भूमि है, छोड़ो भूमि को, भूमि का टुकड़ा लेके क्या करेंगे हम, वो टुकड़े ने चलो टुकड़ा मिल जाए उस पर आपका विचार अच्छा है कि उसमें सेवा केंद्र बनाना है, सेवा करेंगे, पर जो भूमि इतनी बेचैनी क्रिएट कर रही है, ऐसी कोर्ट केसेस जिसमें बेचैनी है, वो हमारी स्थिति को बिगाड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा था ना उस दिन, एक करोड़ क्या है हमारी स्थिति की कीमत है, एक करोड़, संबंध की कीमत है एक लाख, और सेवा की कीमत है 1000। सबसे टॉप मोस्ट कीमत किसकी है, स्थिति, हमारी स्थिति एक करोड़ की है, किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं है। दूसरा संबंध हमारे आपसी व्यवहारिक व्यक्तियों के साथ, और तीसरा सेवा। सेवा में नुकसान हो गया चलेगा, जैसे कोई माता है सेंटर पर, उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दी और बहन जी ने उसको इतना डांटा, वो माता ने आना ही बंद कर दिया। अरे वो सेवा पैसे वापस आ जाएंगे, माता नहीं आएगी। कोई एक कुमार है जिसने कोई गलती कर दी सेवा केंद्र में और उसको बहन जी ने ऐसा डांटा दूसरे दिन से बंद, अब कुमार वापस आएगा क्या, उसकी पालना नहीं की, वो चला गया। पैसे आ जाएंगे, सेवा आ जाएंगी, पर व्यक्ति नहीं आएंगे। व्यक्ति वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति सेवाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। सेवाओं के नुकसान अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए, पर अगर हो गया और किसी व्यक्ति की वजह से हो गया तो क्या उसको डांटे, वो चला गया तो वो नहीं आएगा वापस ना। तो सबसे टॉप मोस्ट है स्थिति, दूसरा रिलेशनशिप्स, तीसरा सेवा। स्थिति, संबंध, सेवा, स स स। तो क्या किया जाए अब कोर्ट केस का, आपस में बैठ के उसकी सुलह कर लो और उसको वहीं उसका निपटारा कर दो बस। और थोड़ा सा ये कर लो, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, आपस में ही कर लो। ठीक, चलो हमारे बस हमारे इसके हिस्से का तुम ले लो, तुम छोटे हो ना, तुम ही ले लो। पांडवों ने क्या किया था, क्या लिया, वो खांडव प्रस्थ ले लिया और फिर खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया क्योंकि भगवान साथ था, उन्होंने तो छल से वो सब ले लिया और खांडव प्रस्थ दे दिया था ना पहले दुर्योधन ने, पर उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया उसको और उसको वो बना दिया। तो जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ, ये सोचो अब ये जमीन जायदाद के झंझट में हमको जाना नहीं है, ये संसार के बखेड़े कभी खत्म होने वाले हैं क्या, कभी नहीं, झंझट तो चालू ही रहेंगे, झमेले ही झमेले हैं संसार में। तो वहां से और क्या कर सकते, पहले यहां योग भट्टी करे घर पे, आज भी कहा बाबा ने साहब भट्टी करो, 7 दिन की भट्टी करो, कल भी कहा था एकांत चाहिए भट्टी के लिए, अपने घर में भट्टी चालू कर दो क्योंकि गीता पाठशाला है, सारे लोग आते हैं वहां पर, उनको कहो 3 दिन योग का प्रोग्राम है सुबह शाम, वो वायुमंडल ऐसा बन जाएगा कि अपने आप उसमें पावरफुल वाइब्रेशन से अपने आप ही उत्तर आ जाएगा। तो योग भट्टी उत्तर है, और क्या उत्तर है, थोड़ा सा मोह लोभ कम कर देना वो उत्तर है, और सुलह कर लेना वो उत्तर है, और क्या करेंगे, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का चिंतन, सेवा को और बढ़ा दो, टीचर बने सुराय ले लो, क्या करना है, पर कैसे भी करके उससे बाहर निकलना है। नुकसान हुआ तो चलेगा क्योंकि अध्यात्म में फायदा अर्थात संसार का नुकसान, मतलब उधर का जो फायदा है वो इधर फायदा है, उधर का जो नुकसान है वो इधर फायदा है अध्यात्म में। अध्यात्म में उधर नुकसान उसको कहा जाता है जो अध्यात्म में फायदा है, उल्टा है गणित अध्यात्म का और संसार का इनवर्सली। तो ये सारे प्रश्न तो इस तरह के बहुत है, सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना देना है, अपने आप को ज्ञान योग में झोंक डालना है, डुबा देना है पूरा, उसमें से सारे उत्तर स्वतः ही प्रकट होंगे, सब कुछ उत्तर उसमें। ये सारे प्रश्न इसलिए है कि व्यक्ति भगवान से दूर है। आज मुरली में कहा ना, मंगल मिलन मनाओ बाप से, तुमको महसूसता होना चाहिए पर तुम्हारी महसूसता भी हवा के जैसी है, उड़ जाती है, ऐसी महसूसता नहीं चाहिए, गहरी महसूसता, प्रगाढ़ महसूसता कि मैं कितना दूर हूं, मैं क्यों ऐसा ज्ञान योग नहीं कर पा रहा, क्या कारण है, और उस कारण को हटा दो। तो ये सारे जो प्रश्न है ऊपर ऊपर के प्रश्न है, ये प्रश्नों के एक एक उत्तर देना मतलब टालियां टहनियां काटना है, बीज जो है उसको पकड़ लो, ये इसके वजह से हो रहा है सब, इसको हटा दो। ओम शांति।